परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए क्षेत्र विशेष के जो तीर्थ हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उनका यदि परिचय न हो तो उनका अपमान कहलाएगा। तीर्थ तो बहुत है लेकिन अपने समीपस्थ एक तीर्थ है जो तीर्थ बेत्रवती नाम से प्रसिद्ध है, जो तीर्थ साबरमती साबरमती के नाम से प्रसिद्ध है। हम यही जानते हैं कि वह आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से, आधुनिक आंकड़ों के हिसाब से कि सबसे गंदी नदी थी और गंदी नदी रही है, लेकिन उसकी पवित्रता किसी नदियों से कम नहीं है। हाँ हाँ, वारिसमती भी है, साबरमती से संबंधित सात नदियों का और वर्णन है और उन सब का संगम बतलाया है और इनके उत्तर तट में कौन कौन से तीर्थ हैं और बतलाया कि इन नदियों के समीप में वो सारे तीर्थ जो विश्व के हैं वो आते हैं। काशी भी आ जाती है, प्रयाग भी आ जाता है, ये सारे तीर्थ साबरमती तट पर आते हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले वेत्रवती का बतलाया। वेत्रवती जिसको हम बेतवा कहते हैं, यहाँ वेत्रवती के नाम से प्रसिद्ध दिया पुराण ने कहा है। वो जा करके अब भ्रंश होकर के वात्रक हुआ, तो कहते हैं कि वात्रक नदी भी स्नान करने से मुक्तिदायिनी है, मुक्ति प्रदान करती है। कहा यह कैसे उत्पन्न हुई, इसकी कथा क्या है, तो कहा कि प्राचीन काल में एक असुर हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर। हाँ, बहुत बड़ा असुर, मतलब जो उत्पन्न हुआ इंद्र को मारने के लिए, इंद्र से बदला लेने के लिए जो असुर उत्पन्न हुआ। अब इंद्र से बदला लेने वाला असुर सामान्य तो होगा नहीं, वृत्रासुर की पूरी कथा आती है कि इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, इंद्र का शत्रु बढ़े, तो ऐसा अर्थ न हो करके हुआ कि इंद्र जो शत्रु है वही बढ़े, बहुव्रीही कर दिया, तो इंद्र का शत्रु वृत्रासुर न बढ़ करके इंद्र ही बढ़ गया और इंद्र बढ़ा तो इंद्र के द्वारा वृत्रासुर का वध हुआ। उस वृत्रासुर ने एक बहुत बड़ा गहरा कुआं खुदवाया था जिस कुएं का नाम था महागंभीर। वह महागंभीर नाम का जो कुआं था उसी से वो नदी पैदा हुई थी जिसका नाम था वृत्रवती, जिसको हम अपभ्रंश में वात्रक कहते हैं। लेकिन उसका महात्म्य कम नहीं था क्योंकि असुरों ने भी तपस्या किया और वरदान लिया कि महाराज हमारे द्वारा बनाए गए इस तीर्थ में कौन आएगा, कौन स्नान करेगा, यदि इसका महात्म्य नहीं होगा तो भला कौन जाएगा, महत्वहीन व्यक्ति को तो कोई नहीं पूछता है। कहा कि वहां स्नान करने से गंगा के समान फल देती है और यह भी बतलाया कि इसका जितने पाप है संताप है सब शांत हो जाते हैं। इसके विषय में एक अच्छा सा प्रमाण दिया, कथा आती है कि एक चंपक नगर के राजा थे जो बड़े ही दुष्ट स्वभाव के थे। राजा लोग भी दुष्टता करते हैं, हमेशा भगवान विष्णु की निंदा करते थे और सोचते थे कि इन ब्राह्मणों को मार डालो क्योंकि ये बड़े नालायक हैं, ये हमको हमेशा उपदेश देते रहते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे रहना चाहिए, क्योंकि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। यदि मूर्ख को उपदेश देंगे तो उसका क्रोध जो है ना सात आसमान पे चढ़ेगा, आप ही को नष्ट करेगा वो पहले। चिड़िया और बंदर की कथा भी पंचतंत्र में आती है कि बानरों से कहा चिड़ियों ने, अरे भाई मेरे पास हाथ पैर नहीं है, चोंच से लाके घोंसला बनाती हूँ, लेकिन तुम लोगों को भगवान ने इतना हाथ पैर दिया है, इतना बड़ा बड़ा, ये इतनी ठंडी बरसात हुई, इतना ठंडी हुई, कांप रहे हो, क्यों नहीं अपना घर निर्माण कर लेते हो। बानरों ने कहा मूर्ख उपदेश देने चली है। उसका भी अंडा वंडा जितना घोसला था माड़ा वाड़ा सब गिरा दिया और उसका अंडा फूट गया। वही कहा कि मूर्ख को उपदेश देने से वो शांत नहीं होता। राजा और ब्राह्मणों की हिंसा दिनानुदिन करते गया। यही नहीं, ब्राह्मणों की हिंसा तो करता ही था, पराई स्त्रियों के इज्जत और आबरू को भी लूटता था, कुल कलंक था। इसलिए उसका नाम विदारुण रख दिया, वो विदारण करने वाला था सबका, सबको दारुण देखता था, सबको दुख देता था। विशिष्ट रूप से जो लोगों को दारुण दे, दुख दे, इसलिए उसका नाम विदारुण हो गया। नाम तो विदारुण था ही, शरीर में भी कुष्ठ हो गया उसको, गलित कुष्ठ उसके शरीर में हो गया। फिर भी राजधर्म का पालन वो करता था, आहार इत्यादि के लिए शिकार पे जाता था। शिकार के संदर्भ में ही वो एक बार घूमते घूमते यही बेत्रवती नदी के तट पर आ पहुंचा और अचानक उसे प्यास लगी तो उस नदी के जल का पानी पिया। पानी पीने से उसकी सद्बुद्धि कुछ जागृत हुई और उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति अनुराग हो गया। पता नहीं क्यों, जब हाथ पैर धोवा तो देखा कि हमारे कुष्ठ ठीक होने लगे। अब वह दो चार पांच दिन के अंतराल में हमेशा वहां आता था और स्नान करे और जल पिए। तो सोचे यहाँ कौन सी बात इस तरह की है, वह पूरा सर्वांग सुंदर बन गया। ये वेत्रावती नदी का, वात्रक नदी जो है, उसका फल। फिर उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और ब्राह्मणों का दक्षिणा दिया। महादेव जी महाराज स्वयं कह रहे हैं पार्वती से कि हे प्रिय, इस वात्रक वेत्रावती नाम की जो नदी है उसमें स्नान करके व्यक्ति पाप बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण वो राजा ही है, विदारुण नाम का राजा है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं और जो लोग वेद की निंदा करते हैं उनके समान कोई पापी नहीं है। उनके वेद निंदा जनित जो पाप है वह भी नष्ट हो जाता है। और जिस स्थान पे वात्रक और साबरमती मिलती है ऐसा संगम वर्णन है यहाँ, उस संगम को खेटक बतलाया, खेटक तीर्थ कहलाता है वह, जिसको हम खेड़ा कहते हैं। जो दोनों का संयोग बतलाया, प्राचीन काल में रहा होगा लंबा, इसलिए उस तीर्थ विशेष को हम खेटक कहते हैं। और खेटक को बताया कि यह धरातल का स्वर्ग है। पद्म पुराण के अनुसार जो खेड़ा मंडल है आपका, खेटक तीर्थ है और यह वात्रक और साबरमती दोनों ही नदियों का पवित्र संगम स्थल रहा है। हाँ, इसीलिए इसका नाम का धरा का स्वर्ग। हमारे देश की माटी हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति वह गढ़ती, हमारे देश की माटी अनोखी मूर्ति वह गढ़ती, धरा क्या स्वर्ग के भी जो गगन सोपान पर चढ़ती। तो गगन के सोपान पर भी चढ़ना हो तो खेटक मंडल जो आपका चारुतर प्रदेश आप मान लीजिए जिसको आप कहते हैं, क्योंकि चारु नहीं चारुतर, चारुतम, जो अत्यंत ही सुंदर हो, बृहस्पति का प्रदेश हो। चारु शब्द हमारे यहाँ शास्त्र में बृहस्पति के लिए प्रयोग हुआ है, इसी से चारु वाक बना। जो सुंदर सुंदर हो, जहां हरी भरी हरियाली छाई हो, जहां पानी जल रूप में भगवान नारायण प्रवाहित होते हों, और जहां जो साबरमती जैसी नदी जो कश्यप ऋषि के द्वारा लाई गई है, वो काश्यपी गंगा कहलाती है साबरमती। और कश्यप जी ने तपस्या किया और कहा कि प्रभु आप इसका ऐसा महात्म करें, इसको इतना महत्वपूर्ण बनाएं कि जो गंगा में जाने का फल मिले वो यहाँ के वासियों को यही प्राप्त हो जाए जो साबरमती में स्नान कर ले। ऐसा साक्षात भगवान अपने मुंह से उमा से कह रहे हैं, अपनी पत्नी से कह रहे हैं। दूसरे से कहें तो कहीं भ्रम में डाल रहे हो सकता है, लेकिन साक्षात जब अपने धर्म प्रिया से कह रहे हैं, कहा कि वहां स्नान करने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। अब प्रश्न विचारणीय है आज कितने लोग वहां स्नान करते हैं, सबको भोग भोगना है, इसलिए भय से वहां स्नान नहीं करते कि कहीं हमारा जन्म न हो तो हम जो इकट्ठा किए हैं कौन भोगेगा क्योंकि सबको जन्म चाहिए, है ना। हमने जो बैंक में जमा कर रखा है वो कौन भोगेगा, अभी हमको 100 वर्ष तक जीना है। यही नहीं, जो हमने इकट्ठा किया है वो अगले जन्म में भी वो हमें मिले, क्योंकि ये जो भोग होते हैं व्यक्ति को तृप्त नहीं करते हैं और अभिलाषाएं बढ़ती जाती है, कितना खा लें। कहा कि कलयुग में जो वेत्रवती वात्रक नदी है यह भी गंगा से कम नहीं है, इसलिए जो लोग सुख धन और स्वर्ग चाहते हैं वो लोग वेत्रवती नदी का सेवन करें, वात्रक नदी का सेवन करें, बार बार इसमें स्नान करें, तो अंत में विष्णु के सनातन लोक को जाते हैं। हमको लगता है कि ये महाराज श्री का जो आश्रम बना होगा, महाराज श्री ने बड़ी विचार करके ही यहाँ समाधि लिया होगा। अच्छा अच्छा, रडू में भी आश्रम है। हाँ, नदी वही है जो हमें दीन नहीं बनने देती है, वो नदी है। नदी को आप उल्टोगे तो दीन शब्द होगा, जो दीन और हीन न होने दे, जहां हम स्नान से पवित्र हो जाएं। और जब पवित्र होते हैं, नदी में व्यक्ति जाता है तो उसके पाप जो है कांपने लगते हैं कि अब ये हमको धो डालेगा, हमको कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगा, इसीलिए वह दीन नहीं होने देती है, पापों को धो डाल देती है, धो देती है। लेकिन इसलिए कहा कि भाव पूर्वक जाना चाहिए कि यह नदी कश्यप ऋषि के द्वारा लाई गई है और यह हमारे पाप को धोने वाली है। अब नदी में जाकर के कुछ गड़बड़ भाव नहीं रखना चाहिए, तीर्थों में जाकर के जिसके हाथ पैर और मन शांत है वही तीर्थों का फल प्राप्त करता है। कहा कि चांद्रायण जैसे व्रत, चांद्रायण व्रत आता है कि एक एक ग्रास जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है वैसे वैसे लिया जाता है। प्रतिपद को शुक्ल पक्ष को 1 ग्रास, द्वितीया को 2 ग्रास, तृतीया को 3 ग्रास, उतना ही खा करके रहना है एक समय, और वो ग्रास भी आंवले के बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि इतना उठाया हमारा एक ही खाना है तो दिन पूरा खा लिया एक ही बार में, ऐसा नहीं। वो ग्रास का प्रमाण है कि जो आंवला का फल होता है आंवले के फल के बराबर ग्रास लेना है। वो चांद्रायण व्रत कठिन होता है, वो चांद्रायण व्रत के करने का जो फल है, जितने पाप है नष्ट होते हैं, वह इस वात्रक नदी और साबरमती के संगम पर स्नान का फल बतलाया है। पृथ्वी पर जितने भी देवता है ये सब वात्रक नदी में विराजमान रहते हैं, ऐसा भगवती के लिए भगवान शिव का वचन है। इसलिए भाव पूर्वक उसमें स्नान करना चाहिए। अभी मकर संक्रांति गई है और अभी माघ स्नान प्रारंभ है, तो माघ स्नान के भी बहुत सारे महात्म्य है। आगे अभी साबरमती का थोड़ा सा 5-10 मिनट में कह करके फिर माघ का वर्णन करेंगे। कहते हैं कि साबरमती की जो उत्पत्ति है वह कश्यप ऋषि के तपस्या से हुई। एक बार कश्यप ऋषि नैमिषारण्य में गए और नैमिषारण्य में ऋषियों के साथ बहुत देर तक उन्होंने वार्तालाप किया, उनकी कथाओं को सुना। तो जब गंगा का वो व्याख्यान सुन रहे थे तो उन्हें लगा ऐसा कि गंगा सबसे पवित्र नदी है, तो यह गंगा हमको मिल